الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے رزق حلال کی برکتیں اور رزق حرام کی تباہ کاریاں. آپ جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، بغیر کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ہر جاندار کو کھانے کی ضرورت ہے، اور انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، ہر چیز کے آداب، اصول، قواعد، ضوابط بیان فرمائے. جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں، جس طرح چاہیں بیٹھ جائیں، جس طرح چاہیں لیٹ جائیں، جہاں منہ مارا گھاس کھا لی، ادھر سے پتے کھا لیے، ادھر سے پانی پی لیا، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. حرام حلال کے لیے کوئی ان کے اوپر کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی چیز ایسی نہیں. لیکن انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قاعدے، قوانین، ضوابط بنائے کہ تمہیں رزق کھانا ہے لیکن حلال کھانا، حرام کی طرف نہیں جانا. اب وہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہمیں حرام سے بچنا ہے اور کس طرح حلال رزق حاصل کرنا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں غلط کام کر کے پیسہ کما لوں اور اس کے بعد پھر میں بعد میں صحیح کام کرتا رہوں. اکثر ایسے بھی لوگ آئے ہمارے پاس کہ پہلے تھوڑا سا غلط کام کر لیں، اس میں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر صحیح کام کرتے رہے. تو ہم نے کہا یہ بتاؤ، غلط کام کرنے کے بعد، ناجائز پیسہ حاصل کرنے کے بعد، تمہیں یہ یقین ہے کہ تم زندہ رہو گے کہ بعد میں تم صحیح کام کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب بنیاد ہی غلط کام پر ہوگی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اگر ابتدا ہی غلط کمائی سے ہوگی تو پھر انجام بھی ویسے ہی خطرناک ہو. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو رزق حاصل کرنا ہے، روزگار حاصل کرنا ہے، ذریعہ معاش ہمارا ہو، وہ پاکیزہ ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی برکتیں، رحمتیں اور اس کے فضائل کیا کیا بیان فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پہلی حدیث تبرانی معجم الاوسط جلد 5 کے صفحہ نمبر 137 پر یہ حدیث موجود ہے. ایک روز صبح کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ رونق افروز تھے. ایک شخص آیا، طاقتور، مضبوط جسم والا. صحابہ نے دیکھا کہ بھاگ دوڑ کر رہا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، جوان آدمی ہے. جب اس کو دیکھا تو صحابہ نے کہا کاش اس کی جوانی اور اس کی طاقت اللہ کی راہ میں صرف ہوتی، یعنی یہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کے بجائے وہ جہاد کرتا. صحابہ کا مقصد یہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام چھوڑ کے جہاد کرتا، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی. اب سنو اپنے آقا کا جواب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فرمایا ایسا مت کہو، اگر وہ محنت और कोशिश इसलिए कर रहा है कि खुद को लोगों के सामने सवाल करने से बचाए, तो यकीनन वो अल्लाह की राह में है। गौर कीजिए, जिहाद नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, रिस्क हलाल की कोशिश कर रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो सहाबा ने कहा काश इसकी जवानी ताकत अल्लाह की राह में खर्च होती, यानी ये जिहाद करता। सरकार ने फरमाया ऐसा मत कहो, अगर वो इसलिए मेहनत कर रहा है कि खुद को लोगों के सामने हाथ फैलाने से सवाल करने से बचाए, तो समझ लो वो अल्लाह की राह में। और अपने ज़ईफ वालदैन, कमजोर औलाद, उनके लिए वो मेहनत कर रहा है कि मेरे बीवी बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, मैं मेहनत करके उन्हें दे दूं। तो सरकार ने फरमाया वो जब तक कर रहा है अल्लाह की राह में, कितना बड़ा दर्जा है रिस्के हलाल कमाने वाले का, कि जब वो घर से निकलता है तो हर कदम पे नेकियां मिल रही, सिर्फ उसकी नियत ये है कि मैं हलाल रिजक कमाऊं। जिहाद नहीं कर रहा, अपने बीवी बच्चों के लिए रिजक हासिल कर रहा है, और वो भी रिस्के हलाल। दूसरी हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 5 के सफा नंबर 2 पर, हदीस नंबर 7, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद को और अपने बाल बच्चों को सवाल से बचाने के लिए, यानी वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, भाग दौड़ करने वाला, हलाल कमाने वाला यानी हलाल माल को तलब करने वाला, इस हाल में कयामत में अल्लाह से मिलेगा कि उसका चेहरा चौहद्वी के चांद की तरह रोशन हो। इस दुनिया में आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और नियत क्या है कि मैं रिस्के हलाल अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊं, उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया वो इस हाल में मिलेगा कि चेहरा चौदहवें की चांद की तरह कयामत में रोशन हो। तो अगर हम चाहते हैं कि कयामत में हमारे चेहरे रोशन हो, तो इस दुनिया में मेहनत करें, कोशिश करें, लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, इस नियत के साथ कि मैं रिस्के हलाल अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं। अहयाउल उलूम जिल्द 2 में इमाम गजाली एक रिवायत नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैह सलाम ने एक शख्स को देखा जो बड़ी इबादत कर रहा, कोने में बैठकर बस इबादत में लगा हुआ। उन्होंने पूछा तेरी किफालत कौन करता है, मतलब यह था कि तू तो इबादत कर रहा है, जरिया माश क्या है, आदमी काम करेगा तो इबादत नहीं करेगा और इबादत करेगा तो काम नहीं करेगा, हालांकि दोनों काम भी हो सकते हैं। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि आप सब छोड़ के इबादत में लग जाएं, इस्लाम ने कहा कि मैनेजमेंट, मैनेज करो अपने वक्त को, इस टाइम पे नमाज पढ़नी है, इस टाइम पे इबादत करनी है, इस टाइम पे यह करना है, इस टाइम पे रोजगार तलाश करना है, सारे काम हो जाएंगे, रिस्क हलाल भी कमा लेंगे, इबादत भी हो जाएगी, फराइज भी हो जाएंगे, नवाफिल भी हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने देखा कि सब काम छोड़कर सिर्फ इबादत में लगा हुआ, तो उससे पूछा तेरी किफालत कौन करता है, उसने कहा मेरा भाई, यानी एक भाई जो था वो तो रिस्के हलाल कमाने में लगा हुआ और दूसरा जो है सब कुछ छोड़कर इबादत में लगा हुआ। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया वो तुझसे बड़ा इबादत गुजार है, वो तुझसे बड़ा इबादत गुजार है, क्या मतलब, उसकी वजह से तू इबादत कर रहा, वही तो कमा के ला रहा है, वरना तू कहां से खाएगा, वो तुझसे बड़ा इबादत गुजार है, क्या मतलब, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब छोड़ के इबादत में लग जाएं, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकलना यह भी इबादत है, अपने बच्चों को दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचाना, इसके लिए कोशिश करना यह भी इबादत है, कमजोर वालदैन की खिदमत करना यह भी इबादत है। ये नहीं सोचे कि हम सिर्फ इबादत में लग जाएं, सारी चीजें छोड़ दें, ये गलत। तीसरी हदीस इमाम बैहक़ी ने सुनन कुबरा जिल्द नंबर 9 के सफा नंबर 43 पर यह हदीस नकल फरमाई, फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने अहलो अयाल के लिए रिस्के हलाल तलाश करे वो राह खुदा में जिहाद करने वाले की तरह है, جو بقدر کفایت دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے وہ شہداء کے درجے پر ہے۔ غور کرو، ایک آدمی لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، میدان میں اترتا ہے، تلوار لے کر اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تب اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور ایک آدمی رزق حلال تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے، سرکار نے فرمایا شہیدوں کے درجے پر۔ کتنی بڑی بات! یہ سب رزق حلال کمانے والوں کی فضیلتیں ہیں۔ چوتھی حدیث، امام غزالی احیاء العلوم جلد 2 کے صفحہ نمبر 345 پر نقل فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک حلال کھاتا ہے اللہ تعالی اس کا دل روشن فرما دیتا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات! اب آپ دیکھیں، اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین کھانے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کوئی چیز ایسی ہمارے کھانے میں رزق میں شامل نہ ہو جائے کہ جس میں حرام کا ادنا سا بھی شائبہ ہو۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا تو اس باغ کے مالک کی اجازت کے لیے کئی سال اس باغ کی خدمت کی، صرف اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے سوال نہ ہو کہ ابو صالح تو نے بغیر اجازت کیوں وہ سیب کھایا۔ ان کی نظر میں وہ چیز غلط تھی کہ میں نے مالک کی بغیر اجازت سیب کھا لیا، یہ غلط چیز میرے جسم میں پہنچ گئی، قیامت میں اللہ سوال کرے گا میں کیا جواب دوں۔ آج تو ہم لوگوں سے چھین کر کھا جائیں تب بھی احساس نہ ہو، لوگوں کا مال کھا جائیں تب بھی احساس نہ ہو، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ کر لیں تب بھی احساس نہ ہو، دوستوں کی امانتیں رکھ کر بھول جائیں اور اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیں تب بھی احساس نہ ہو۔ انہوں نے ایک سیب کھایا کئی سال صرف اس لیے خدمت کی، قیامت میں اللہ کو جواب دے ہونا۔ تو جب اس طرح وہ کریں گے تبھی تو زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے، تبھی تو قلب روشن ہوگا۔ اتنی احتیاط وہ لوگ کرتے تھے، کیونکہ رزق کا تعلق جسم سے بڑا گہرا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان جو کھاتا ہے، جو چیز ہم کھائیں گے وہ خون بن کے جسم میں دوڑے گی، یہ پورے جسم میں جو حرکت ہے یہ سرکولیشن آف بلڈ ہے۔ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں، جب تک خون جسم میں دوڑ رہا ہے، ہاتھ کام کر رہا، پیر کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ناک سونگ رہی ہے، کسی کو خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو جائے، یعنی دماغ میں ایک رگ ہوتی ہے اس میں خون جم جائے، ڈیتھ ہو گئی۔ خون جم گیا، موت واقع ہو، دل میں شریانیں ہیں، خون جم گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جی ایک وینز آپ کی بند ہے، ہم اس میں بائی پاس کریں گے، کوئی کہتا ہے یہ کریں گے، کوئی کہتا ہے کچھ کریں گے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جب تک خون جسم میں دوڑ رہا ہے اس وقت تک جسم کام کر رہا، جس حصے میں خون جام ہو گیا وہی حصہ مفلوج ہو گیا۔ اب یہ جو فالج ہوتا ہے یہ کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں فالج ہو گیا، سرکولیشن آف بلڈ رک گیا، ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا، اب اس کو آپ اٹھائیں تو اٹھ نہیں، پیر پہ ہو گیا تو پیر وہیں جام، جس حصے پر ہو گیا وہ حصہ جام ہو گیا۔ تو یہ خون جو ہے یہ غذا سے بنتا ہے، جگر خون بناتا ہے اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا اگر حرام ہو تو وہ حرام جسم میں خون بن کے دوڑتا ہے، تو حرام ہی اعمال و افعال سرزد ہوتے، جیسی غذا کھائی ویسی چیزیں سرزد ہوں۔ اسی لیے کہا پاک غذا کھاؤ، طیب غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ، ایک لقمہ حلال تم نے کھایا اسی میں عافیت ہے، اسی میں صحت ہے، اسی میں تندرست، اور حرام اس میں بیماری ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل روشن ہو، ہماری زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں، تو اس حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا جس نے 40 دن تک حلال رزق کھایا अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन फरमा दे और उसकी जबान से हिकमत के चश्मे जारी फरमा दे। पांचवीं हदीस तबरानी अल मौजमुल औसत जिल नंबर 5 के सफा नंबर 337 पर यह हदीस मौजूद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने रिज़्क़ के हलाल की तलाश में थक कर शाम की, यानी वो सारा दिन घूमता रहा, शाम को थक कर वो घर आया और इस हाल में उसने रात गुजारी। अब सारा दिन आदमी जब घूमेगा तो रात को थक कर वो बिल्कुल लेट जाएगा। सरकार ने फरमाया, जिसने शाम इस हालत में की कि वो सारा दिन रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहा, शाम को थक कर वो घर आया और घर में लेटा, वो इस हाल में होगा कि अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, उसके गुनाह माफ़ फरमा। देखो कितनी बड़ी बशारत। सिर्फ आप रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकले, आप ये ना समझें कि मैं सारा दिन फिरता रहा मुझे कुछ नहीं मिला, अल्लाह की रजा मिल गई, बख्शिश मिल गई, कितनी बड़ी बात। छठी हदीस तबरानी अल मौजमुल औसत के जिल नंबर 5 सफा नंबर 34 पर यह हदीस मौजूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। अब मुस्तजाबुद्दावात क्या है? मुस्तजाबुद्दावात का मतलब यह है कि उसकी हर दुआ कबूल। बहुत बड़ा दर्जा है, कोई शख्स मुस्तजाबुद्दावात बन जाए, अल्लाह ताला उसको यह दर्जा दे, तो मकसद क्या होगा? जिसके लिए हाथ उठाएगा उसी वक्त दुआ कबूल, इसको कहते हैं मुस्तजाबुद्दावा। सरकार ने फरमाया ना, आप जमजम पियो, एक घूट पियो दुआ करो, दूसरा पियो दुआ करो, तीसरा पियो दुआ करो। अब लोग सोचते हैं दुआ कबूल हो रही है, पता नहीं क्या क्या दुआ करते हैं, कोई शादी के लिए करता है, कोई बच्चों के लिए करता है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला ने, कुर्बान हो जाए उनके ऊपर, कितनी बेहतरीन दुआ फरमाई। उन्होंने किसी चीज के लिए दुआ नहीं की, आप जमजम पिया दुआ की, मौला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, यानी ऐसी दुआ जिसमें सारी दुआएं हैं, मौला मुझे वो बना दे कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाए। तो मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? जिसकी हर दुआ कबूल हो, कोई दुआ रद्द ना हो। तो हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे मां बाप कुर्बान, मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। अब आका ने क्या फरमाया सुनिए, फरमाया, अपने खाने को पाकीजा बनाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। अपने खाने को पाकीजा बनाओ, पाकीजा से मतलब हलाल, हराम तो पाकीजा होगा नहीं। पाकीजे से मतलब यह नहीं है कि आपके सामने साफ सुथरा खाना रखा है, अगर साफ सुथरा मजेदार खुशबू वाला खाना आपके पास रखा है, खाने की खुशबू आती ना और भूख बढ़ जाती, साफ सुथरा पाकीजा खाना रखा है, खुशबू आ रही है, लेकिन रिज़्क़े हराम से बनाया गया अल्लाह की नजर में नापाक है। जाहिरी तौर पे कितना ही अच्छा हो लेकिन रिज़्क़े हराम से वो बनाया गया, रिज़्क़े हराम से खरीद कर लाया गया, हरगिज ना खाओ। जाहिरी तौर पर कितना ही मजेदार हो, कितना ही जायकेदार हो, कितनी खुशबू आ रही, और एक खाना सादा सा है, एक दाल रोटी आपके सामने रखी है जिसमें कोई जायका नहीं है, लेकिन रिज़्क़े हलाल से है, वो ही सेहत के लिए बेहतरीन है, उसी में अमन है, उसी में आफियत है, उसी में सुकून, अल्लाह के नजदीक वही पाकीजा है। तो सरकार ने क्या फरमाया, अपने खाने को पाकीजा बनाओ, मुस्तजाबुद्दावात हो जाओ। इसमें एक इशारा यह है कि जो हराम खाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, और जो हलाल खाएगा, मुसलसल हलाल खाएगा, अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबुद्दावात बना देगा, यानी वो जब भी हाथ उठाएगा जब भी कबूल, कितनी बड़ी बात। सातवीं हदीस इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम के की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 116 पर एक बुजुर्ग का कौल नकल करते हैं। यह हदीस ने कौल है, फरमाते कि मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुकमा खाता है तो उसके पहले गुनाह माफ हो जाते, और जो शख्स तलब रिस्क हलाल के लिए निकलता है उसके गुनाह दरख के पत्तों की तरह झड़ते हैं। दरख से पत्ते झड़ते हैं ना, कितनी तेजी के साथ झड़ते हैं, सारी जगह भर जाती। कहा जैसे पत्ते झड़ते हैं ऐसे उसके गुनाह झड़ते, यानी उसके गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। सही बुखारी में हदीस शरीफ मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी ने भी कोई खाना इससे बेहतर नहीं खाया कि जो अपने हाथ से हलाल कमाई का हो, मेहनत से हो, कोशिश से हो, यानी उसने अपने हाथ से मेहनत की हो और वो हलाल हो, फरमाया इससे बेहतर खाना है ही नहीं कोई। इससे ये पता चला कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम साफ सुथरा पाकीजा रिजक खाएं जो हमारे लिए सेहतमंद भी हो, मुफीद भी हो, दुआएं कबूल भी हो, दिल रोशन भी हो, चेहरा कयामत के दिन चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ भी हो, ये सारी बशारतें उसके लिए हैं जो अपने जहन में ये नियत करके निकलता है कि मैं अपनी औलाद को रिस्क हलाल खिलाऊं, हराम नहीं खिलाऊं। बहुत से लोग हलाल कमाई को हराम कर लेते, वो कैसे? आप कहेंगे जब कमाई हलाल है तो हराम कैसे हो? एक मिसाल है, एक आदमी को सेठ ने कैश पर बिठा दिया दुकान पे, आमतौर पे होता है ना, कारोबार हो रहा है, सेठ साहब अपने ऑफिस में एक आदमी को बिठा दिया, भाई ये कैशियर है, उसका काम क्या है, जो भी माल आया उसने एंट्री की, पैसे ड्रॉज में डाल, सारा दिन होता रहा। शाम को जब दुकान बंद हुई, अब कैशियर का काम क्या है, जो जो उसने लिखा है उसको चेक करेगा और जो कैश है उसे चेक करेगा कि उसके मुताबिक है या नहीं, और उसके बाद वो रख देगा या फिर सेठ साहब को जाके दे दे। ईमानदारी तो यही है ना। अब हलाल को हराम किस तरह करेगा? शैतान ने उसे बहकाया, एक माल आया है इसकी एंट्री नहीं करो, जब एंट्री नहीं होगी तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, जब उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि यह माल आया या ये माल गया, इसके पैसे आए, जब लिखा नहीं है वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए, बाकी लिख दिया सेठ साहब को दिखा, पकड़ा नहीं जाएगा ना भाई, जब सेठ तो वही चेक करेगा जो लिखा है, उसने देखा जो लिखा है ये ठीक है, कैश कितना है इसके मुताबिक है, ठीक है भाई जाओ। इन्होंने 1000 रुपए जेब में रख लिए या 2000 जितने भी थे जेब में रख, और सोचा क्या कि मालिक मुझे नहीं देख रहा, यही सोचा ना, मालिक नहीं देख रहा, अगर ये सोच लेता कि हकीकी मालिक जो है वो देख रहा, हकीकी मालिक जो है वो देख रहा है, अरे ये दुकान का मालिक तो मजाजी मालिक है, ये हकीकी मालिक थोड़ी है, ये मुझे नहीं देख रहा लेकिन जो मेरा हकीकी मालिक है वो मुझे देख रहा है, तो कभी भी गलत काम नहीं करे, एक पैसा क्या एक पाई का भी काम गलत नहीं करे, नहीं ये मेरे लिए हराम है, हलाल नहीं है। जो तनख्वाह उसे मिल रही है हलाल है, मेहनत की मिल रही ना, अब उस तनख्वाह में 1000 रुपए बगैर सेठ की मर्जी के जो नाजायज हैं वो शामिल हो गए, पूरी तनख्वाह पूरी कमाई हराम हुई या नहीं? और उसकी मिसाल ऐसी कि दूध का एक कढ़ाव रखा है, उसमें एक बूंद पेशाब की डाल दो, आप पिएंगे? नहीं, नहीं तो सारा नापाक हो गया। हम कहे भाई एक बूंद ही तो है, पी लो, क्या है, एक बूंद है, ये तो पूरा कढ़ाव दूध का है, खाली एक बूंद तो डालिए। कहा वो एक बूंद जो नापाक है उसने पूरे दूध को नापाक कर दिया। इसी तरह ये पूरी कमाई जो पाक है, 1000 रुपया या 1 रुपया मालिक की मर्जी के बगैर उससे बचाकर आपने चोरी करके डाला, पूरी कमाई नापाक हो। इसलिए हर चीज में एहतियात कीजिए। किसी ने आपको काम के लिए पैसे दिए, आपने वो काम कर लिया, पैसे बच गए, जाकर मालिक के हवाले कर दो, अगर वो अपनी खुशी से दे दे तब आपके लिए जायज है, और आपने उसको बताए बगैर अपनी जेब में रख लिया, नाजायज, हराम। قیامت میں پوچھا جائے گا. آپ کہیں گے مالک کو تو پتہ نہیں. ارے جو حقیقی مالک بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھ رہا. اب وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا. جیسا وہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے. جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے باطن کو بھی دیکھتا. اس سے کہاں بچو گے؟ اور پھر دوسری بات, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, ہماری تو ڈبل کمائی ہوگی, تنخواہ تو الگ ہے, اس کے علاوہ تو یہ کمائی اوپر کی, یہ تو اوپر کی کمائی, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, اتنے میں نے بچا لیے, آج میں نے 1000 بچا لیے, آج 2000, آج 3000, مالک کو تو پتہ ہی نہیں. اتنے جمع ہو گئے چلو فریج لے آؤ, اتنے جمع ہو گئے جاؤ ٹی وی لے آؤ, اتنے جمع ہو گئے جاؤ اے سی لگوا لو, خوش ہو رہے ہیں, تنخواہ اپنی الگ اوپر سے کمائی الگ. یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو اس وقت کہیں گے کوئی تو ہمیں دیکھ نہیں رہا, گواہ کون ہے؟ گواہ نہیں ہو تو مقدمہ ڈسمس ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, جج یہ پوچھتا ہے گواہ کون ہے, اسی لیے تو یہ لوگ گواہوں کو خرید لیتے ہیں. آج کل تو ججوں کو خرید لیتے ہیں تو گواہوں کی تو بات ہی الگ ہے, یا تو خرید لیتے ہیں یا پھر مروا دیتے ہیں. پتہ چلا پیشی سے پہلے ہی اڑ گئے صاحب, کوئی بم دھماکے میں اڑ گیا, کوئی فائرنگ میں مر گیا, کسی پہ گاڑی چڑھ گئی, گواہی غائب. جب گواہ نہیں, بھائی گواہ تو ہے نہیں. اب قیامت میں کون گواہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, انسانوں کو گواہ بنائے ہی نہیں. گواہ کس کو بنایا؟ اپنے اعضائے بدن کو گواہ بنایا. تمہارے اعضا خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, یعنی منہ بند. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم, ہاتھ اور پیر کلام کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. زبان جو آج بول رہی ہے قیامت میں بند, مہر. الیوم نختم علی افواہہم, ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, زبان بند, اور ہاتھ اور پیر جو خاموش ہیں یہ بول رہے ہیں. ہاتھ بولیں گے مولا میرے ذریعے اس نے رشوت لی تھی, میرے ذریعے رشوت دی تھی, میرے ذریعے اس نے چوری کی تھی, میرے ذریعے یہ خیانت کی تھی. پیر بولیں گے, پیروں کو زبان دی جائے گی, میرے ذریعے غلط مقام کی طرف چل کر گیا تھا, غلط راستے کی طرف چل کر گیا تھا, گناہ کے لیے چل کر گیا تھا. اب سوچیں گے ہاتھ کیسے بولیں گے, یہ تو گوشت ہے, اس کی تو زبان نہیں ہے. ہاتھوں کی زبان ہے, پیروں کی زبان ہے, اب بولا تو زبان سے جاتا ہے, جب زبان ہی نہیں تو بولیں گے کیسے؟ کہتے یہ تو گوشت ہے, گوشت کیسے بولے گا؟ ہم نے کہا سنو, زبان جو ہے یہ بھی تو گوشت ہے, اور اتنا سا لوتھڑا ہے, یہی فتنہ ہے. جو خدا اس زبان کو, گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے, کیا وہ ہاتھوں اور پیروں کو قوت گویائی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے, اس کی شان ہے. تو آج زبان جو بول رہی ہے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بند, مہر لگا دی, اور ہاتھ اور پیر جو خاموش ہیں یہ بولیں گے, گواہی دیں گے. اب ذرا سا تصور کرو اگر ایسا ہوگا تو کتنی رسوائی ہوگی, انکار کی گنجائش ہوگی؟ نہیں, گواہی کوئی اور نہیں دے رہا, اپنے اعضائے بدن دے رہے ہیں. اسی لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے آج اس دنیا میں عمل ایسا کرو کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں, مولا میرے ذریعے یہ حلال کمائی کرتا تھا, میرے ذریعے لوگوں کی مدد کرتا تھا, میرے ذریعے یتیموں بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا, میرے ذریعے حلال کمائی کما کر اپنے بیوی بچوں کو سوال کرنے سے روکتا تھا, میرے ذریعے کمزوروں کو اٹھاتا تھا, ضعیفوں کو اٹھاتا تھا. پیر گواہی دے کہ میرے ذریعے یہ پانچ وقت مسجد کی طرف جاتا تھا, یہ محفلوں میں جاتا تھا, یہ سرکار کی سناخانی میں جاتا تھا, یہ تربیتی نشست میں آتا, یہ گواہی لوگ دیں, آزا یہ گواہی دیں. جب آزا یہ گواہی دیں گے پروردگار عالم خوش ہو جائے. تو اس لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے آج یہ دنیا دار العمل ہے, اسی میں اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو اب تک جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ تو تھیں رزق حلال کی برکتیں, ٹھیک ہے نا, جو رزق حلال کمائے سرکار نے فرمایا اللہ کی راہ میں ہے. دوسری حدیث میں فرمایا شہداء کے درجے پر ہے. تیسری حدیث میں قیامت میں اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. चौथी में उसका दिल रोशन होगा, उसकी जबान से हिकमत के चश्मे जारी होंगे। पांचवी में मुस्तजाबुद दावात होगा। ये सारी फजीलतें रिज़्क़े हलाल की बरकतें, यानी सिर्फ आप सुबह के वक्त अपने घर से ये सोच कर निकलें कि मैं जो आज काम पर जा रहा हूं हराम नहीं कमाऊंगा, हलाल कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, सिर्फ ये सोच कर आप निकले, जब तक आप वापस लौटे अल्लाह की राह में। किसी को जिहाद का सवाब मिल रहा है, कोई शोहदा के दर्जे पर है, किसी का दिल रोशन हो रहा है, किसी की दुआ कबूल हो रही। अब आइए इसका दूसरा पहलू, तस्वीर का दूसरा रुख। ये तो हलाल कमाई की बरकतें थी ना, हमने पूरा उनवान क्या बताया था, हलाल कमाई की बरकतें, रिस्क हलाल की बरकतें। और दूसरा याद ही नहीं होगा किसी, रिस्क हराम की तबाहकारियां। हराम लोग खाते हैं। इमाम ज़हबी अलैहि रहम अपनी किताब अल कबाइर के सफा नंबर 134 पर हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस पर अल्लाह का एक फरिश्ता है जो हर रात निदा देता है कि जिसने हराम खाया उसके नफिल कबूल हैं ना फर्ज कबूल। अब करते रहो कितनी इबादत है, लगे हुए नफिल पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन रुकमा हराम का खा रहे हैं, रिश्वत, सूद, हराम खोरी, सारी चीजें, कोई इबादत कबूल नहीं, न नफिल कबूल न फर्ज कबूल। मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल एक हदीस शरीफ मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 दिरहम में कपड़ा खरीदा और उसकी कीमत में 1 दिरहम हराम का हो तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर होगा उसकी नमाज कबूल नहीं हो। गौर करो, 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा और 1 दिरहम हराम का हुआ और वो जब तक जिस्म पर है नमाज कबूल नहीं। ये तो 1 दिरहम की बात है, यहां तो सारी कमाई हराम की लोगों की आप देख लें, और एहसास तक नहीं, रिश्वत को समझते, ये तो तोहफा है, ये तो गिफ्ट है, खुद मांगते हैं और एहसास तक नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अब वो करने के बाद क्या है, नमाज पढ़ो, क्या है रोजे रखो, क्या है हज करो, कितनी इबादत कर लो, सब नामंजूर। तिर्मिजी शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हराम का लुकमा खाया उसकी 40 दिन की नमाजें नामंजूर, कबूल नहीं हूं, 40 दिन की नमाजें, और फरमाया 40 दिन तक नामंजूर हूं, आगे 40 दिन तक एक लुकमा। तो फिर ऐसे रिजक से फायदा क्या, आपने बेहतरीन खाना खा लिया, रिश्वत लेकर बिरोस मंगा लिया, फला चीजें मंगा लिया, खूब अपने आप को खुश कर लिया, नमाजें ना मंजूर, इबादत ना मकबूल, ऐसे रिजक से क्या फायदा। इसीलिए किसी ने लिखा था, ए तायरे लाहूती, उस रिज से मौत अच्छी जिस रिज से आती हो परवाज में कोताही। परवाज ऊपर की तरफ जाना, उड़ना, रूहानियत हासिल करना, मकामात हासिल करना, और लुकमाए हराम खा लिया परवाज में कोताही, नीचे गिर गए। एतायरे लाहूती, उस रिक से मौत अच्छी जिस रिक से आती हो परवाज में कोताही। इसलिए इंसान को चाहिए कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें सूद की आमिजिश हो, क्योंकि कुरान ने कहा कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा, सूद खाना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, लड़ाई है। और बताओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन लड़ सकता है, कोई जंग कर सकता है? इतनी वईद है कि अगर तुमने सूद खाया तो तुम ऐसे हो जैसे तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहे हो, जंग कर रहे हो। इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखा, फरमाते हैं कि इंसान के पेट में जब हराम का लुकमा जाता है, जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर उस वक्त तक लानत करता है जब तक वो हराम का लुकमा उसके पेट में रहता है, और अगर उसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नुम, उसी कैफियत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नुम। सही मुस्लिम हदीस शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया पर मर मिटने वाले का आपने जिक्र किया और फरमाया, बाज़ औकात ऐसा होता है कि बिखरे बाल, गर्द आलूदा चेहरे और मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला अपने हाथ से वजन उठाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, दुआ करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर वो गोश यानी जिस्म का जो हिस्सा हराम से परवान चढ़े वो आग का हकदार है। परवान चढ़ने का मतलब क्या है? जब हम रिजक खाते हैं ना तो जिस्म में खून बन के दौड़ता है, जिस्म को सेहत होती। तो फरमाया, जो हिस्सा उस हराम के रिजक से, लुकमाए हराम से बनता है वो आग का मुस्तहिक, यानी उसको जाना ही आग में है। इसलिए इस दुनिया में ये कोशिश करनी चाहिए, हर आदमी अपने तौर पर ये गौर करे कि कहीं मेरी कमाई में कोई एक पैसा ऐसा तो नहीं कि जिसमें सूद शामिल हो, जिसमें रिश्वत शामिल हो, जिसमें किसी की हक तल्फी शामिल हो, जिसमें मालिक की नजरों से बचाकर पैसा लिया गया हो, किसी की बगैर इजाजत उसका माल इस्तेमाल किया गया हो, किसी के बगैर इजाजत उसका पैसा इस्तेमाल किया गया हो, ये सारी चीजें जो हैं ये सब हराम में आती। अगर हम एहतियात करेंगे और कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाएगा, अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। होता यह है कि हराम पैसा बहुत तेजी के साथ आता है। आप देख लें, किसी भी शोबे में आप देखें, किसी से रिश्वत मांगी, किसी ने रिश्वत दी, 1 लाख दे दी। अब आदमी सोचता, मैं मेहनत करता, कोशिश करता, कितने दिन में 1 लाख जमा होता? ये तो 1 दिन में आ गया, 1 मिनट में आ गया। मैंने उसका काम रोक दिया कि अगर 1 लाख दोगे तब काम होगा। हालांकि उसका काम बिल्कुल जायज है, आपके कलम हिलाने से काम हो सकता है, लेकिन मेज पर फाइल पड़ी है, नहीं करते। क्यों? 1 लाख लाओ, 50 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, जैसा काम देखा, नाजायज है ना, हराम। 1 दिन में 50 लाख आ गया, लेकिन अपने साथ मुसीबत लेकर आया, परेशानी लेकर आया, बेसुकूनी लेकर आया, बीमारियां लेकर आया, आफतें लेकर आया, ये नहीं सोचते। और जिस तरह ये हराम पैसा आता है उसी तेजी के साथ निकल जाता, ये इंसान नहीं सोचता। और रिस्के हलाल, एक लुकमा आपने खाया उसी में आफियत है, उसी में सेहत है, उसी में अमन, उसी में सुकून। जितने ये बड़े लोग हैं सब बीमार हैं, कोई भी सेहत याब नहीं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। एसी में सो रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, और एक गरीब दरख के नीचे लेट के सोता है, सो जाता नींद आ जाती। नींद अल्लाह की नेमत है, नींद अल्लाह की नेमत है। अगर नींद नहीं आए तो कितनी बेचैनी होती। मिसाल के तौर पर बुखार चढ़ जाए किसी को, बुखार की वजह से, नजला खांसी की वजह से, बीमारी की वजह से एक रात ना सो सके, कितना वावेला करता है। मिलने के लिए जाओ, खैरियत पूछो, क्या हाल है? हाल बहुत बुरा, कल रात पूरी रात मैंने जाग के गुजारी, कल रात मैं सो नहीं सका, सारी रात बुखार रहा, खांसी रही, नजला रहा, ये रहा, वो रहा, वावेला कर रहा है। एक रात नहीं सोए तो वावेला, और ये नहीं सोचा कि उससे पहले पूरे महीने जो सोते रहे उसका क्या हुआ, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने आराम की नींद सुलाया और इत्मीनान के साथ उठाया, उसका शुक्र नहीं है। एक रात नहीं सोए तो वावेला कर दिए कि मुझे यह हो गया, मुझे ये। इंसान बड़ा नाशुकरा, शुक्र नहीं करते। हालांकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तेरा करम है, उसने हजारों लाखों से हमें बेहतर रखा। ऊपर वाले को देखते, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, वो एसी में है, मैं बगैर एसी के, वो गाड़ी में, मैं पैदल, वो बंगले में, मैं किराए के मकान में, वो ये खा रहा है, मैं ये खा रहा हूं, ये नहीं देखते। एक वो भी है कि वो सुबह खाता है तो उसको पता नहीं कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को खाता है तो पता नहीं सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग, अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। नीचे वाले को देखोगे कनात पैदा होगी, तवक्कुल पैदा होगा अल्लाह की जात पर, भरोसा पैदा होगा, और ऊपर वाले को देखोगे हिर्स हवस पैदा हो, लालच पैदा हो। खैर, बात यहां से चली कि हमने आपके सामने दोनों चीजें बयान कर दी, रिस्के हलाल की बरकतें और रिस्के हराम की तबाहकारियां, और इसका मुशाहिदा आप इस दुनिया में कर लें, आराम से कर सकते। दोनों किस्म के लोग आपके पास मौजूद हैं, हलाल कमाने वाले, हराम खाने वाले। जो सूद खाते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो लोगों के माल पर, यतीमों बेवाओं के माल पर कब्जा करते हैं, उनके हुकूक को गसब करते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं, हम जो चाहें करें, हमारे पास पैसा है, पैसे के जरिए हम सब खरीद लेंगे। लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनको दिखा देता है, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, बेसुकूनी, बेचैनी, बेकरारी, ये सब इसी दुनिया में उनको मिल जाती, और उनको अंदाजा नहीं होता कि ये किस वजह से है। ये सब रिस्क हराम की तबाहकारियां, वो आपके जिस्म को भी तबाह कर देगा, आपकी रूह को भी तबाह कर देगा, इबादत में खुशू और खुजू को भी तबाह कर देगा। जो हराम खाता है उसकी इबादत में कभी भी खुशी और खुजू पैदा ही नहीं हो सकता, चाहे मेरे ऊपर रिक्कतदारी हो, मैं इबादत करूं, मैं कोशिश करूं, नहीं, हरगिज नहीं होगा। और जो रिस्के हलाल खाता है उसकी इबादत भी कबूल है, उसकी दुआ भी कबूल है, उसका दिल भी रोशन होगा, उसकी जबान से हिकमत के चश्मे भी जारी होंगे। जब तक वो वापस लौटेगा, वो जिहाद में है, शोहदा का दर्जा भी मिलेगा, कयामत के दिन उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह रोशन भी हो। ये लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। किसी का एक पैसा भी आपके पास हो आप लौटा दीजिए, किसी का एक पैसा। मैं अभी हॉलैंड गया, एक आदमी जो बजाहिर कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं था, वालिद मोहतरम हजरत अशरफुल मशाइख का मुरीद था, नशा भी करता था, फिर उसने तौबा की, नमाजी बन गया, हज का मौका आया, दरखास्त दी, कबूल हो गई, हज पे भी चला गया, लोगों से माफी मांग कर गया। अब जब वहां से वापस आया तो एक आदमी का उस पर कुछ पैसा था जो पाकिस्तान में था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने आकर मुझसे कहा कि 10 साल पहले ये शख्स हॉलैंड आया था और इसका इतना पैसा मेरे ऊपर था, ये आप मेरी तरफ से उसको दे दो। और जिसका पैसा था वो भी भूल गया था, उसको भी याद नहीं था कि मेरा पैसा इसकी तरफ है। यह है खशियत इलाही। मुझे हैरत हुई और मैंने उसे मुबारकबाद दी और उसको शाबाश भी दी। उसने कहा बस मेरे दिल में एक बेचैनी है कि मेरे ऊपर किसी का पैसा ना रहे। मैंने हज कर लिया, तौबा कर ली, सबसे माफी मांग ली, लेकिन वो आदमी पाकिस्तान में था, मैं उससे माफी नहीं मांग सका। और मुझे याद है कि 10 साल पहले इतना पैसा था, लिहाजा ये मैं आपको दे रहा हूं, मेरी तरफ से उस तक पहुंचा दें, उससे कहें मुझे माफ कर दें। आज दुनिया में उसने किया है, इंशाअल्लाह कयामत में उसे उसका अजर मिलेगा। अमानत को वापस लौटाना यह बहुत बड़ी नेकी है। हम तो दूसरों का माल खा जाए, अगर वो भूल गया चलो अच्छा है भूल जाओ, ये तो हमारी जाती मिल्कियत। एक एक पैसे का हिसाब होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युल मुफलिस, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास ना माल हो ना दिरहम हो वो मुफलिस है। जाहिर है आपसे भी सवाल करेंगे, आप यही जवाब देंगे। मुफलिस का मतलब फकीर, कमजोर, गरीब। तो सहाबा ने यही जवाब दिया। सरकार ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं जिसके पास माल ना हो। फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल कयामत के दिन इस हाल में अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा कि वमन जरबा हाजा, वमन अकला माला हाजा, वमन शतमा हाजा, किसी को इसने गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, उसके नामा अमाल में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, जकात भी है, सदकात भी है, सारी नेकियां नामा अमाल में होंगी, लेकिन उसके साथ साथ किसी का माल खाया, किसी को गाली दी, किसी का दिल दुखाया, किसी का माल गसब किया, किसी को कत्ल किया, इसकी सारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिसके साथ इसने ऐसा किया हो। सारी नेकियां तकसीम कर दी, अब नामा अमाल बिल्कुल खाली, खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में खड़ा, यानी सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं। फरमाया ये मुफलिस है, मेरी उम्मत का मुफलिस ये है, खुश हो रहा है मैंने हज किया, मैंने जकात दी, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी तो हैं, तो वो नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको कयामत की मुफलिसी से बचाए। तो आज की इस नशिस्त का मैसेज पैगाम यही है, हम सबको चाहिए कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अपने बीवी बच्चों को और खुद भी रिज्क हलाल खाएं और खिलाएं, कभी भी हराम की तरफ ना जाएं। एक करोड़ क्या, एक अरब रुपया भी आपके पास अगर आ जाए और वो हराम का हो, उसको सिर्फ ये सोचकर लात मार दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा नहीं है, उससे बेहतर और उससे ज्यादा अल्लाह ताला आपको अता कर दे, ये उसकी शान है, उससे बेहतर अता करेगा, उससे ज्यादा अता करेगा। और अगर सोचेंगे नहीं ये मिल रहा है मैं ले लूं, तो फिर जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ कर, या अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल की बरकतें अता फर, रिज़्क़े हराम की तबाहकारियों से बचा। इलाहुल आलमीन हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फर, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फर, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज सुबकदोशी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फर, जो साईं पे औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इनके इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।